नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर। 1,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हुई। राज्य सरकार ने शोक संतप्त परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। जांच आयोग का गठन भी किया। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द किया। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों के कई हिस्सों में लगातार वर्षा जारी। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भीषण गर्मी से राहत की संभावना। और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने सेंट लूसिया में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। भारत का आज रात 8 बजे बारबाडोज में अफगानिस्तान से मुकाबला। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।
उद्घाटन में सड़क बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति योजनाओं और उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री चेन्नई पत्नीटॉप नाशरी खंड के सुधार, औद्योगिक संपदा के विकास और 6 सरकारी डिग्री कॉलेजों के निर्माण जैसी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी 1,800 करोड़ रूपये की कृषि और संबंध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना का भी शुभारम्भ करेंगे। श्री मोदी श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के यंग अचीवर्स के साथ भी बातचीत करेंगे और सरकारी क्षेत्रों में नियुक्त 2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। कल श्री मोदी SKICC श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल होने वाले कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की।
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहां भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वाशिंगटन में योग सत्र का आयोजन किया है। योग की वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए उपराजदूत सुप्रिया रंगनाथन ने कहा कि भारत से योग की प्राचीन पद्धति की शुरुआत हुई और इसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इसे अपनाया है। बांग्लादेश में ढाका के मीरपुर इंडोर स्टेडियम में भारतीय उच्चायोग कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उच्चायोग ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के योग संघों को आमंत्रित किया है। संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। दुबई में योग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केन्द्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के कल्लकुरुची में जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार ने त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए तथा इलाज करा रहे लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के मुद्दे पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री स्टालिन ने कहा कि अनियमितताओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में कपड़ा उद्योग परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री सिंह ने कपड़ा उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से सुझाव मांगे। उन्होंने सभी हितधारकों से अपने मुद्दों के साथ साथ समाधान भी भेजने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इस साल 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। श्री सोरेन ने कार्मिक विभाग को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण का उद्देश्य न केवल राज्य में विभिन्न समुदायों का अध्ययन करना है, बल्कि जनसंख्या के विभिन्न घटकों के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण करना भी है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रखा। विशेष अदालत के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अपर सॉलिसिटर जनरल SV राजू की दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज टिहरी और नरेंद्रनगर वन प्रभाग के वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगे और विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री यादव कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा और केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ योगाभ्यास करेंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज सूरज कुंड क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम के तहत मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्री यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
पीपल है, गुलर है, जामुन है और जो झाड़ वगैरह भी है, करोंदा वगैरह के बेर है, ये जो सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों को लगाने के लिए हम लोगों ने पूरे देश भर में एक अभियान छेड़ा है। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हम ये चाहेंगे कि जिले के DFO इस बात का जोर दे कि जो उनकी नेटिव स्पीशीज है, जो पेड़ दिल्ली में लग सकता है वो पेड़ आसाम में दूसरा होगा, कश्मीर में दूसरा होगा, तमिलनाडु में दूसरा होगा, हम उसी प्रकार से बीजों का वितरण करें कि नेटिव स्पीशीज पे हम ज्यादा जोर दें। प्रकृति का कोई पेड़ ऐसा नहीं है, कोई पौधा ऐसा नहीं है जो मनुष्य के काम न आता।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आज मीडिया की उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया कि नीट पेपर लीक मामले से संबंधित आरोपी पटना में उसके गेस्ट हाउस में रुके थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नोडल एजेंसी NHAI ने स्पष्ट किया कि उसके पास पटना में कोई गेस्ट हाउस की सुविधा नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई शहर के लिए मध्यम बारिश का येलो अलर्ट, पालघर जिले के लिए रेड अलर्ट तथा ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, रत्नागिरी, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून और आंधी तूफान के कारण आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम, पूर्वी और मध्य भारत में भीषण गर्मी कम हो जाएगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक शोमा सेन रॉय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के पूर्वी इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी कम हो जाएगी।
कल हमारा एक पश्चिम विक्षोभ से पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा बहुत धुंधाबंदी और क्लाउडीनेस था, जिसके चलते हीट वेव की स्थिति काफी कम हो चुका है और रियल हीट वेव भी बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस में वेस्टर्न हिमालयन रीजन, थोड़ा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, पंजाब में हुआ है। मगर आज का जो हमारा वार्निंग है, खासकर वेस्ट उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक, यानी कि 20, 21, 22, 23 तारीख तक हमारा उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति आइसोलेटेड प्लेसेज में जारी रहेगा। दिल्ली में थोड़ा 23-24 तारीख को हीटवेव आने की पॉसिबिलिटी रहेगा। समय टेम्परेचर तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ेगी, मगर हीटवेव का स्थिति नजर में नहीं आ रहा है कि प्रोबेबली ज्यादा नहीं लग रहा है कि हीटवेव दोबारा रिकवर करेगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पिछले 24 घंटे के दौरान गर्मी से संबंधित बीमारी से 13 लोगों की मौत हो गई और 33 रोगियों का इस समय इलाज चल रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कल तक 9 रोगियों की मौत हो चुकी थी। अन्य बड़े अस्पतालों में भी ताप आघात के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक परामर्श जारी कर राज्यों के स्वास्थ्य विभागों से भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए तैयार रहने और समय से उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा है। मौसम विभाग ने केरल में सप्ताह के अंत में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए तमिलनाडु के अरक्कोणम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 7 टीमें केरल भेजी गई हैं। राज्य सरकार की मांग पर डिप्टी कमांडेंट शंकरा पांडियन के नेतृत्व में 210 कर्मियों की टीमें भेजी गई हैं। पिछले 2 सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में जारी भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। इससे लोगों को पानी के टैंकरों और बोरवेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। प्रभावित इलाकों में संगम विहार, महरौली, वसंत विहार, ओखला, वसंत कुंज, चाणक्यपुरी, नरेला, रोहिणी, उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, मोती नगर, पटेल नगर, छतरपुर, करावल नगर और मुखर्जी नगर तथा गीता कॉलोनी शामिल हैं। यमुना नदी में कम जलस्तर और महत्वपूर्ण जलशोधन संयंत्रों में तकनीकी समस्याओं के कारण राजधानी में पानी की कमी है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 ग्रुप 2 के मुकाबले में इंग्लैंड ने मेजबान वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए। जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य इंग्लैंड ने 18वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एक अन्य मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अमरीका को 18 रन से हरा दिया। आज ग्रुप 1 में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से बारबाडोज में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर 1,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हुई। राज्य सरकार ने शोक संतप्त परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द किया और मुंबई और उसके उपनगरों के कई हिस्सों में लगातार वर्षा जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।